ये इश्क समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं दोस्तों, प्यार करना बहुत आसान होता है। हर किसी को किसी ना किसी से मोहब्बत हो ही जाती है, पर क्या आपको लगता है कि क्या वो सच्ची मोहब्बत है? क्या आपको लगता है कि वो आपने जिससे प्यार किया था वो इंसान भी आपसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे सुरभि, और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पॉडकास्ट जिंदगी एक सफर में। जैसा कि आपको पता है कि जिंदगी एक सफर हर बार आपको कुछ ना कुछ एक नई कहानी लेकर के आता है जो आपकी जुड़ी हुई होती है, जो हमेशा से आपको इंस्पायर्ड करती है। कभी मोटिवेशनल होता है तो कभी ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ बातें होती है, तो कभी प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें होती है। तो चलिए आज हम एक छोटी सी बहुत प्यारी सी लव स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंतज़ार। और सही नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक वन साइडेड लव स्टोरी है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो दरअसल ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दिल से बेहद ही साफ होती है और बहुत ही भोली भाली सी प्यारी सी लड़की होती है, जिसे बस अच्छाई हर लोगों में अच्छाई नज़र आती है। तो होता यूँ है कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होती है, यूँ ही उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही होती है और कॉलेज जा रही होती है, पर उसे पता नहीं होता है कि ज़िंदगी में उसके क्या 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 बदलाव आने वाले हैं। एक दिन जब वो कॉलेज जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है, क्या इसी के इर्द गिर्द कहानी है? तो नहीं, अभी आप सुनिए, समझिए और फिर बताइए। वो लड़की बेचारी बहुत ही शांत और बहुत ही अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की होती है, हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक हंसी, एक खूबसूरत सी हंसी लेकर हमेशा खुश रहती है और लोगों को खुश रखती है। तो होता यूँ है कि जब वो अपने कॉलेज में जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिससे कि उसे बेहद उसे पता नहीं होता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। वो सोच में पड़ जाती है। वो लड़का उसके पास आता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे आपकी नोटबुक मिल सकती है? वो सोच में पड़ जाती है कि अच्छा, नोटबुक ये क्यों मांग रहा है? तो वो थोड़ा सा हिचकी जाती है, थोड़ा सा परेशान होती है। फिर इसके पहले कि वो कुछ कहती, वो लड़का खुद बोलता है कि जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी कॉलेज में नया आया हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ाई हुई है, मुझे किसी ने बताया कि आप हर रोज़ क्लास करती हैं तो आपसे बेहतर नोट्स कोई और नहीं लिखता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे नोट्स ले लूँ। फिर वो लड़की बेचारी नोट्स दे देती है। नोट्स देने का सिलसिला शुरू होता है, वो लड़का फिर दूसरे दिन नोट्स उसे वापस करने आता है और फिर थैंक यू बोलकर निकल जाता है। यूँ ही इन लोगों का आपस में फिर जान पहचान होती है, मुलाकातें होती है, बातें होती है, रोज़ ये लोग साथ में कॉलेज आने जाने लगते हैं। और उसके बाद एक दिन ये जब क्लास से वापस आ रहे थे तभी रास्ते में एक गुंडे मिल जाते हैं और वो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। तो फिर वो लड़की बेचारी बहुत डरी सहमी सी रहती है, उसे लगता है कि यार कैसे, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लड़के जो उसके साथ आ रहा था, वो लड़का जिसको उसने नोट्स दे रखा था, वो उसकी जान बचाता है। फिर वो बेचारी बहुत खुश हो जाती है, उसको थैंक्स बोलती है, बोलती है अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाती, ये गुंडे मुझे सही नहीं लग रहे थे। वो लड़का बोलता है, अरे नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बातें हो जाती हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, सब कुछ ख़त्म, वापस ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर ऐसे ही मिलने का सिलसिला बढ़ता जाता है। पर एक दिन उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद वो जब एक टाइम आता है, क्लासेस ओवर हो जाते हैं, सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तो कॉलेज ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, ये लोग एक दूसरे को आखिरी बार बाय बोल रहे होते हैं, तभी इस लड़की को ऐसा लगता है कि शायद ये इस लड़के के बिना रह नहीं सकती है। और वो उसे बाय बोलते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाती है और फिर बोलती है, अच्छा आज तो कॉलेज का आखिरी दिन है ना, तो लड़का भी बोलता है हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तो वो लड़का भी बोलता है हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। और ऐसे कह के दोनों अपने अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं। वो बेचारा अपने घर चला जाता है और ये बेचारी अपने घर आ जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं। इसके बाद अचानक से इधर जब कोई एलुमनाई मीट होता है कॉलेज में, फिर से उन लोगों को बुलाया जाता है और तभी वो लड़का भी आता है। और फिर से तभी इनकी एलुमनाई मीट में मुलाकात होती है। तो ये लड़की बेचारी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि तब तक उसको एहसास हो चुका होता है कि शायद उसे इस लड़के से मोहब्बत हो गई है। और ये लड़का, इसके दिल में तो कुछ था ही नहीं, तो वो बेचारे नॉर्मली जैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, वैसे उसने उस लड़के से मुलाकात की, बातें की, सब कुछ सही रहा, ठीक है। अलमनाई मीट के बाद भी जब जाने लगे तो लड़की को ऐसा लग रहा था कि अगर शायद अभी हम अपने दिल की बात नहीं बोल पाए तो शायद ज़िंदगी में कभी ना बोल पाए। वो बेचारी बहुत तेज़ी से भागते हुए उसके पास आती है और उसके बाद बोलती है कि उसे कुछ कहना है। बहुत परेशान रहती है, उसे लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी तो शायद मैं बहुत परेशान रहूंगी। उसके वो बेचारी बहुत बेचैन सी हो जाती है। और फिर होता यह है कि आखिर में वो हिम्मत जुटा करके बोलती है, सुनो मुझे तुमसे ना कुछ कहना है। तो वो लड़का बोलता है हाँ बोलो, क्या बोलना है। तो बेचारी वो आंख बंद करके बहुत हिम्मत जुटा करके बोलती है कि ऐसा लगता है ना कि शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, या तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि जब तुम ये 2 साल नहीं थे मेरे पास, तुम्हारी आदत सी हो गई थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं कभी बताने की हिम्मत नहीं रख पाई। तो फिर उसे भी बहुत अजीब सा लगता है और सारी बातें वो कह देती है। लेकिन इसके पहले कि वो आंखें खोलती है, आंख खोलने के बाद पता चलता है कि जिस लड़के को अपने वो दिल की बात बताना चाह रही थी, वो लड़का तो वहां से कब का जा चुका था, शायद उस लड़के ने कुछ सुना ही नहीं। फिर उस लड़की को बहुत अफसोस होता है और बेचारी रोते हुए चुपचाप दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाती और वो वापस अपने कॉलेज से घर आ जाती है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। फिर अचानक से जब शादी की बात होने लगती है तो लड़की फिर से बेचैन हो जाती है कि आखिर मुझे उस इंसान से प्यार है, मैं उस लड़के से ही शादी करूंगी, एटलीस्ट उसको एक बार अपने दिल की बात बता तो दूं। बेचारी उसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढती है, बट शायद उस नंबर को जब वो डायल करती है तो वो नंबर चेंज हो चुका होता है। उसे बहुत परेशानी होती है, वो बेचारी बहुत बेचैन हो जाती है कि अब कहाँ मिलना होगा, क्योंकि नेक्स्ट एलुमनाई मीट तो और भी ज़्यादा वक्त है अभी, तब तक मैं तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। तभी इसके फ़ोन की घंटी बजती है और उसे ऐसा लगता है कि किसका कॉल है, जरा मुझे देखना चाहिए। कॉल इसने उठाया तो पता चलता है कि घर से कॉल था और उसके रिश्ते की बात हो रही थी। उसके पापा ने कॉल किया था कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम रेडी हो जाओ, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तो वो बोलती है जी पापा। फिर वो बेचारी बहुत रो धो के अपने आप को मना कर आधे के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो देखने के लिए, तो वो तैयार हो जाती है। और जब वो तैयार होती है तो जब वो आई वापस तो लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, सब कुछ देखना दिखाना कंप्लीट होता है, पर बेचारी वो लड़की वहीं खोई सी रहती है, वहीं खोई सी रहती है। उसको लगता है ऐसा जैसे कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है, किसी और से शादी हो जाएगी। वो बेचारी तो जिसको प्यार करती है उसको अपने दिल की बात तक नहीं बता पाई है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, उसकी शादी की डेट फाइनल होती है, पर वो भागते हुए किसी तरह से एड्रेस ढूंढती है, निकालती है, कॉलेज में कॉल करके पूछती है, तो पता चलता है कि वो लड़का वहाँ पे रहता है और उसको कॉल करने के लिए परेशान रहती है। उसका एड्रेस लेती है, भागते हुए उसके घर जाती है। जब उसके घर पहुँची तो वो लड़का बहुत शॉक्ड रहता है। वो अचानक से उसे गले से लिपट करके बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उस दिन भी कहने की कोशिश की थी पर मैं कह नहीं पाई थी, फिर आज मैं तुम्हें सच में कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी शादी लग रही है। लड़का बेचारा बहुत शॉक्ड रहता है, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अब इसे कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि शायद तब तक उस लड़की को भी इस लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी, पर अब वो बेचारा बताए तो बताए कैसे, शायद या तो कोई बात थी जो उसकी जुबान पे आते आते अटक रही थी, वो नहीं बता पा रहा था, वजह क्या थी पता नहीं। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में फिर उसने उस लड़के ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ऐसे भला बुरा बोल बोल करके वो वापस आ जाता है। उस लड़के को बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है कि नहीं ये लड़का कुछ तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे भी मुझसे मोहब्बत है पर पता नहीं क्यों ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो बातें पता करके वो रहेगी, ऐसा कहती है, वो खुद से प्रॉमिस करती है और ऐसा कह के उसके घर से वापस आ जाती है। फिर वो नेक्स्ट उसके घर पहुँचती है, फिर बोलती है आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे पता है। तो फिर वो लड़का गुस्से में रिजेट हो जाता है और वो बोलता है ऐसे तो ये माने कि नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो उसे फिर से कुछ खड़ी खोटी सुना के वापस भेज देता है। तीसरे दिन फिर वो एक लड़की को लेकर मिलने आता है उस लड़की के घर कि ये लड़की मेरी होने वाली वाइफ है और मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ। बेचारी लड़की टूट के बिखर जाती है, बहुत रोती है, बहुत कलपती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही गलत थी, मेरे दिल की आवाज़ गलत थी, ये लड़का मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं है, शायद ये वन साइडेड लव था, यानी कि एक तरफा प्यार था, एक तरफा मोहब्बत थी जो मैं सिर्फ किए जा रही थी, उसके दिल में तो शुरू से मेरे लिए कुछ था ही नहीं। और वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, अंत में बेचारी परेशान होकर वो जाती है और बोलती है अब सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया है, तो फिर क्या मतलब है, चलो पापा जहाँ कह रहे हैं वहाँ शादी कर लेते हैं। आखिरी बार वो उस लड़के से मिलने के लिए जाती है, मम्मी पापा को बोल देती है ठीक है आप मेरी शादी कर दो, जिससे करनी है मैं तैयार हूँ। शादी की डेट फाइनल हो जाती है, शादी का कार्ड हाथ में लिए वो लड़की उस लड़के के घर आखिरी बार जाती है कि चलो आखिरी बार मिल लेती हूँ, फिर शायद कब मिलना हो नहीं मिलना हो नहीं पता। बेचारी भारी मन से जाती है उसके घर जाती है और वो गेट नॉक करती है, बहुत बार नॉक किया, गेट नहीं खुला। अंत में उसने दरवाजे को तोड़ करके वो अंदर गई तो वो देख के शॉक्ड थी। दोस्तों आपको पता है कि उस दरवाजे के अंदर उसने ऐसा क्या देखा जिससे कि वो परेशान हो गई और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों जब उसकी आंखें खुली ना, मतलब जब वो अंदर गई तो उसकी आंखें जो देख रही थी उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो जब अंदर गई तो उसने देखा वो लड़का सोफे के नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसकी मुंह से खून निकल रहा है और वो बेहोश निढाल पड़ा हुआ है, और अगल बगल जब वो नज़र दौड़ाती है, बहुत चिल्लाती है, चीखती है क्या हुआ तुम्हें, बताओ 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 बताओ, तो कोई आसपास नज़र नहीं आता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हाथ में होता है, उस पर लिखा होता है कि उसे कैंसर था और वो तीसरे स्टेज फाइनल स्टेज का कैंसर था, उसको जाना ही था, उसके पास वक्त बहुत कम था, शायद वो कुछ चंद मिनटों का मेहमान था और इसलिए उसकी ज़िंदगी कम थी। फिर उसे एक बगल में नोट लिखा हुआ मिलता है, उसमें लिखा होता है कि सुनो मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उस लड़की के नाम का ये नोट था, वो जब उठाती है और पढ़ती है तो उसकी आँख से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। उस नोट में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब से नहीं डे वन से, जब से मैंने तुमसे नोट्स मांगा था, पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, हिम्मत करके जब बताने की कोशिश भी की तो तबीयत मेरी अचानक से ख़राब हुई, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम चंद दिनों के मेहमान हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत चंद दिनों के मेहमान हो, तुम इससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर मेरे दिल में आया भी, फिर भी मैं हिम्मत करके तुम्हें बता नहीं पाया, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, तुम्हारी शादी होने वाली थी, मैं चाहता था कि तुम खुश रहो उस इंसान के साथ, इसलिए जब तुम मेरे घर आई तब भी मैंने मना कर दिया, मैंने तुमसे रूडली बिहेव किया और वो मेरी बहन थी, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, पर शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, इसलिए आखिरी खत, शायद जब तक तुम पर हो तब तक मैं तुम्हारे सामने जिंदा भी ना रहूं, पर बस प्यार से जाते जाते एक बार गले लगा देना, शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे और अगले जन्म में मैं भगवान से तुम्हें मांग लूँगा और फिर हमें अलग कोई नहीं कर सकता है, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और देखो मुझे मिस मत करना, ठीक है, आई लव यू। और ये खत पढ़ने के बाद वो लड़की बहुत ज़ोर से रोती है, बहुत ज़ोर से रोती है, उसे बहुत प्यार से गले लगाती है और फिर आई लव यू बोलते हुए बहुत बेचारी तड़प जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, और फिर वो भी फैसला करती है कि जब मैं इस जन्म में इस लड़के की नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होंगी, अगले जन्म का इंतज़ार करना है तो अगले जन्म का ही इंतज़ार सही, पर मैं और अब इस ज़िंदगी में दुनिया में जीना नहीं चाहती। वो भी उसी वक्त अपने आप को मौत के हवाले कर लेती है और फिर दोनों साथ में ही ख़त्म हो जाते हैं। आखिरी शब्द जो उसने कहे थे कि इंतज़ार और सही, मतलब इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में हम साथ होंगे, हमारा मोहब्बत मुकम्मल होगा। तो इसी को कहते हैं सच्चा प्यार दोस्तों। दोनों एक दूसरे को पा नहीं पाए लेकिन अगले जन्म का इंतज़ार उन्हें रहता है और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? हम फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ ज़िंदगी एक सफ़र पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।